ओम शांति। डॉक्टर आनंद, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूं सोलापुर से और ये मेरी युगल है। तो आज हमें टॉपिक दिया था प्रश्न उत्तरी का, तो एक मुरली से एक क्वेश्चन लेंगे और उसका उसके उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे।
तो ये कोई क्लास नहीं है, ये एक डिस्कशन सेशन ही है। तो प्रश्न है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? ये डिस्कशन है, अगर साथ में आपका भी कुछ रिप्लाई आएगा तो हम अच्छा रहेगा। आज की मुरली से नहीं है ये क्वेश्चन, हमें दिया है ये टॉपिक दिया है। ये मुरली है 17 अक्टूबर 1981 की। तो ठीक है, चल। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज साधन कौन सा है? श्रेष्ठ जीवन तब बनती है जब अपने को ट्रस्टी समझकर चलते। तो श्रेष्ठ जीवन तब बनती है जब अपने को ट्रस्टी समझकर चलते। ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। तो सभी को बाप ने ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी होना, बाप पूछते हैं ट्रस्टी होना। ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपन स्वतः निकल जाता है। गृहस्थीपन ही श्रेष्ठ जीवन से नीचे ले आता है। ट्रस्टी का मेरापन कुछ नहीं होता। जहां मेरापन नहीं वहां नष्टो मोहा स्वतः हो जाते। सदा निर्मोही अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। मोह में दुख होता है तो नष्टो मोहा बनो। तो बाबा ने इस प्रश्नोत्तरी में नष्टो मोहा बनने की विधि हमें बताई है। तो नष्टो मोहा में क्या है कि मोह में तो दुख होता है, लेकिन जब निर्मोही होते हैं तो सदा श्रेष्ठ सुखी। श्रेष्ठ सुखी यानी जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने का यानी निर्मोही बनाने का सहज साधन कौन सा बताया है? ट्रस्टी। तो हमें अपने को ट्रस्टी समझकर चलना है। तो साथ में ट्रस्टी की डेफिनेशन भी दी है, ट्रस्टी अर्थात न्यारा और प्यारा। तो अभी थोड़ी इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि न्यारा और प्यारा। तो बाबा की जब जीवन कहानी पढ़ी तभी एक विश्व किशोर दादा का एक एग्जाम्पल है उसमें, कि जब बाबा ने जब वो बीमार थे तो बाबा ने रात भर बैठ के सकाश दिया, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनका एक वाक्य था कि बच्चे को तो देखा है, मिट्टी को देखने की जरूरत नहीं। तो कितना यानी जितना प्यारा उतने ही वो न्यारे भी थे। आज भी शायद अव्यक्त मुरली में आया है, बाबा का एक एग्जाम्पल दिया है कि वो बच्चों से तो बहुत प्यार था ब्रह्मा बाबा का, लेकिन जब बुलावा आया और गया, यानी बुलावा आया और उड़ गया पंछी। तो इतने न्यारे और प्यारे थे। तो हमें भी न्यारा और प्यारा बनना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो लौकिक में भी एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, कभी अभी दो दिन पहले ही कहां पढ़ा है कि सुधा मूर्ति मालूम रहेगा, सोशल रिफॉर्मर। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर किया कि बच्चों के साथ हर एक माँ का अपना अटैचमेंट रहता है। तो उसका टॉपिक था कि डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। तो उनका भी माँ बच्चों का तो बच्चों से एक अटैचमेंट रहता है माँ का, तो वो भी अपने बच्चों को अपना एक फिजिकल एक्सटेंशन ही समझती थी। और जब बच्चे बड़े होने लगे तो उनकी प्रायोरिटी भी चेंज होने लगी। लड़की की शादी हो गई तो उसकी प्रायोरिटी ससुराल की तरफ ज्यादा रहने लगी। और जब लड़का भी यूएस गया, लेकिन जब उनकी बातचीत होती तो हमेशा कहता था कि माँ को मिस कर रहा है, उनके हाथ के खाने को मिस कर रहा है, इंडिया को मिस कर रहा है। जब वो आके इंडिया में सेटल हुआ, चेन्नई में सेटल हुआ, तब और उनकी जब शादी हो गई तो वो घर से अलग हो गए, उसकी भी प्रायोरिटी चेंज होती गई। तभी उन्होंने अपने इस एक आर्टिकल में लिखा है, फ्यू लेट गो ऑफ द वंस यू लव दे विल नेवर गो अवे, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट। तो उन्होंने इससे सीखा कि अगर हम हर एक को अपनी अपनी स्वतंत्रता देंगे, उनसे बंधन में नहीं बंधेंगे, तो वो हमसे दूर नहीं जा सकता। तो ऐसे हमें हर बंधन में बंधना नहीं है, लेकिन एक संबंध निभाना है। तो न्यारा और प्यारा बनने के लिए बाबा ने, यानी बाबा कहते कि हर संबंध से मुझे याद करो। तो हर एक संबंध से अगर हम उसके साथ जुड़ते जाएंगे, उसके साथ अटैच होते जाएंगे, तो लौकिक में डिटैचमेंट आती जाएगी। तो जैसे एक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है, यानी मेरा एक्सपीरियंस कर सकते कि एक बार ऐसे ही खाना बनाते वक्त, खाना बनने के बाद जब रोटी सिक गई तो मुझे एकदम से अंदर से आवाज आई कि बाबा आ जाओ खाना तैयार है। जैसे लौकिक में बच्चों से बातें करते ना कि जल्दी आ जाओ गरम गरम खाना है खा लो, तो वैसे एकदम अंदर से आवाज आई। तो उसमें एक सहज भाव था, एक अपनापन था, कुछ एफर्ट नहीं था याद करने का, पर एक, और उसमें एक बहुत खुशी थी जो मुझे लौकिक में अपने बच्चों के साथ भी कभी महसूस नहीं हुई। तो ऐसे ही अगर हम लौकिक रिश्तों में अलौकिकता लाते रहेंगे तो वो बंधन नहीं बनेगा, वो संबंध बनता जाएगा। और अभी ये हुआ न्यारा और प्यारापन। और फिर बाप ने बताया है कि अभी इस आंसर में ऐसे ही भी बताया कि ट्रस्टी होकर रहने से गृहस्थीपन स्वतः निकल जाता है। तो ट्रस्टी और गृहस्थी, गृहस्थी याने बोझ और ट्रस्टी याने हल्कापन। जब बोझ होता है तो वो नीचे खींचता है, और हल्कापन है तो हम श्रेष्ठ जीवन बनती जाती है, हल्के होते हैं। तो बाबा, तो ट्रस्टी में समर्पण भाव रहता है। तो समर्पण भाव, बाबा का भी एग्जाम्पल है कि कोई भी परिस्थिति आई तो बाबा ने ट्रस्टी समझकर रहे, बाबा हमेशा ट्रस्टी समझकर अपने आप वो परिस्थिति को पार करते गए। बेगरी पार्ट का भी एग्जाम्पल है, बेगरी पार्ट में भी हाँ। और ट्रस्टी में एक बोझ, गृहस्थी में बोझ है, बोझ याने मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा संसार, बस ऐसे मेरे 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 की लाइन रहती है। तो इस मेरे को हमें तेरे में बदल देना है, यानी तेरा, एक बाबा का। तो करण निमित्त, हम निमित्त बन के रहेंगे तो निमित्त से एक हल्कापन आता जाएगा। तो इसलिए ट्रस्टी यानी हल्के, हल्केपन से हम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरा शरीर, मेरा परिवार, तो इससे ना हम चिंता में रहते हैं, हमें एक डर रहता है, भय रहता है, हमेशा हम भय में जीते हैं कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, तो मेरे परिवार से कोई रिश्ता मुझसे छूटता जाएगा, तो यानी हर वक्त मेरा धंधा अच्छा नहीं चला, तो ऐसे एक भय में जीते हैं, चिंता रहती है। लेकिन अगर हम निमित्त समझ के रहेंगे और करण करावन हार बाबा है, उसके भरोसे है, तो फिर हर चीज हल्की होती रहेगी। तो यही है ट्रस्टीपन।
और जब परिस्थिति आती है तब स्वयं श्रेष्ठ हो तो भी श्रेष्ठ, संग श्रेष्ठ हो तो संग का रंग।
तो मेरे हस्बैंड किडनी फेलियर में है, ही वो डायलिसिस पे हैं, डेली अपना डायलिसिस करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम मधुबन जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट ट्रिप था ये, फर्स्ट ट्रिप था। तो जब ग्रुप ने सेंटर में डिसाइड किया कि मधुबन जाना है, तो मेरे हस्बैंड कहते कि मैं तो ड्यू टू डायलिसिस नहीं जा सकता हूं, लेकिन आप जरूर जाओ, बाबा का दरबार है, वहां जाना है। तो मैंने कहा मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, हम दोनों ज्ञान में आए हुए हैं। कहते नहीं तुम्हें जाना है, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेता हूँ। उन्होंने टिकट ले दी। मेरे को अंदर से हो रहा था कि पिछले 30-35 सालों से शादी हुई और पीछे से कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। चलो जी, हर रोज डामाडोल हो रहा था कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, बट मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन शाम को हर रोज जब वो डालसी शुरू करते थे अपने रूम में, तो मेरे को सुनाई देता था, बाबा जो करना आपने ही करना है, सब ठीक होना है। तो उम्मीद ये थी कि नवंबर के बिगनिंग में उनका ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन वो ट्रांसप्लांट पोस्टपोन हो गया। उसका रीजन क्या हुआ कि उनको एकदम एट्री फिब्रिलेशन हो गया। एट्री फिब्रिलेशन जब तक उनका हार्ट स्ट्रांग नहीं, उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था, बिकॉज हार्ट हैज टू बी स्ट्रांग। तो वो पोस्टपोन हो गया सारा कुछ। अभी मैं यहां पे आ गई, फिर उन्होंने मेरे को भेज दिया, कहते नहीं तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि अगर नवंबर के बिगिनिंग में हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हो गया तो मैं दिसंबर में कैसी मधुबन जाऊंगी। उनको ऐसे छोड़, रिकवरी पीरियड चल रहा था, कैसे छोड़ के जाऊंगी। लेकिन बाबा के विश्वास ने जो किया वो ठीक ही किया कि कहीं से कभी उस इंसान को हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई, एट्री फिब्रिलेशन एकदम कहां से डायग्नोज हो गया। हाँ, और वो जो उनका ट्रांसप्लांट था पोस्टपोन हो गया और वो बड़ी से रिकवर कर रहे हैं। अब एट्री फिब्रिलेशन भी आफ्टर मेडिकेशन ठीक हो गया है। जो बाबा ने करना है ठीक ही करना है, तो बाबा के ऊपर विश्वास करो, हर चीज बाबा ने ही सब कुछ करना है। एक क्लिनिकली प्रैक्टिकली मैंने खुद देख लिया है।
ओम शांति। मैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, ज्ञान में 5 साल से हूँ। सॉरी मैं ऐसे बैठ। शुरू से ही बाबा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सेंटर भी नहीं है 2 साल से, एडिलेड में अभी बनेगा, तो इतनी पालना भी नहीं हो रही है, लेकिन शिव बाबा ने खुद ही एक्सपीरियंस कराए। मेरा 2.5 साल पहले एक्सपीरियंस रहा कि जब मेरी लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा तो यहाँ से फोन गया कि आप अब आ जाओ। तो बस यही मन में संकल्प रहता था कि बाबा जैसे कहते हैं कि मम्मा मरे तब भी हलवा खाओ। तो आई वॉज वेरी अटैच्ड, मैं बहुत अटैच थी अपनी मदर से ज्ञान से पहले। लेकिन जब वो ज्ञान में आई तो हमेशा मैं बोलती थी उनको कि नहीं अभी तो बाबा मिल गया है, अभी मुझे आपकी इतनी जरूरत है। लेकिन इंटरनली मैंने उनको पक्का किया कि आप अभी अटैचमेंट मेरे में मत रखो। तो मेरी तो थी नहीं, उनकी भी थोड़ी कम होती चली गई जैसे ज्ञान की हम टर्निंग करते थे। और जब मुझे पता लगा कि वो सीरियस है तो आई वॉज बिट अपसेट। बाबा की फोटो थी सामने तो थोड़ा रोती थी, बाबा को बोलती थी सॉरी बाबा मैं रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ मुझे नहीं पता। तो लेकिन जब मैं यहाँ आई और जब मैंने अपनी स्थिति को देखा कि सच में मैंने इस ज्ञान को कितना धारण किया है, तो जब लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा तो मैंने उनको ब्लेसिंग दी उनकी डेड बॉडी सामने पड़ी है एंड आई वॉज लाइक कि उनको ब्लेसिंग दे रही हूँ। और जब भी हम आईसीयू में जाते थे तो हम उनको यही बोलती थी, मैं बोलती थी कि देखो आत्मा अब तुम्हारा पार्ट खत्म हो चुका है, आप अब जाओ और अपना नया जीवन स्टार्ट करो। सो आई वॉज रियली स्ट्रांग एंड आई सो माई सेल्फ दैट हाउ मच आई कुड बी स्ट्रांग। और 13 दिन के पहले ही मुझे तेरह दिन से पहले ही मुझे वापस जाना पड़ा जॉब की वजह से। तो आई हैड ए वेरी बिग हाउस, तो दैट वॉज फर्स्ट टाइम कि मुझे इतने बड़े घर में मेरे लौकिक डॉटर हैं उसके साथ रहना पड़ा। एंड ओबियसली सिचुएशन भी इतना ठीक नहीं था जब मैं यहाँ से गई तो, और वो न्यू बिल्ड हाउस था तो बाउंड्रीज भी नहीं थी और कर्टेन्स भी नहीं थे। इट वॉज कम्प्लीटली कि अभी होना है काम। और डबल स्टोरी हाउस में मैं इतना 12 साल के बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इतना बड़ा घर और फिर अकेले रात को भी रहना है दिन में भी रहना है। तो लोग आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि आप कैसे रहते हो यहाँ पे, आपको डर नहीं लगता रिलेटिव ना। तो मैंने कहा कि नहीं बाबा मेरे साथ हैं। तो एक दिन मेरी 12-1 बजे आँख खुली कि थॉट आ जाता है अनकॉन्शियस माइंड में, तो मैंने बाबा को बुलाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा बाहर खड़े हुए हैं मेरी सिक्योरिटी के लिए, और तभी मुझे नींद आ गई। सो मैंने अपनी स्थिति को देखा कि जो बाबा का ज्ञान रियली में इम्प्लीमेशन करना चाहते हो आप तो नशा और निश्चय। ओम शांति।
और कोई शेयर करेगा? ठीक है, तो बाबा ने हमें डबल डॉक्टर बनाया है। एक तो आपको शरीर को तो ठीक करना ही है, साथ में मन को भी ठीक करना है, तो डबल डॉक्टर का टाइटल दिया है। तो मैं देखता हूं आजकल प्रैक्टिस में लोगों का अटैचमेंट अपने शरीर के तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अपने सगे संबंधियों के तरफ और अपने रिश्तों में भी अटैचमेंट बढ़ गया है। तो एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो मैं किडनी का डॉक्टर हूं, तो किडनी के रिपोर्ट्स लेके आते हैं, उसमें एक टेस्ट होती है क्रिएटिनिन। तो वो क्या करते हैं आजकल पेशेंट्स, रिपोर्ट रहती है उसके बाजू में नॉर्मल लिखा हुआ रहता है, तो वो रीड करते हैं। तो जैसे ही वो क्रिएटिनिन 1 से 1.2 तक रहता है, तो 1.3 हो गया तो उनको टेंशन आ जाता है कि मेरे को किडनी की बीमारी हो गई है। हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, कोई घर में बीमार रहेगा, तो इतना टेंशन लेके आते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे को किडनी की बीमारी हो गई अभी। तो पहली बार आते हैं तो हमको समझाते हैं, आपको कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं, आपका खाना पीना सब ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर दूसरी बार फिर आएंगे, 1.3 से 1.35 1.4 हो गया और टेंशन, तो मेरे को तो बीमारी हो ही गई अब तो बस। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, ऐसे शुगर के पेशेंट भी हैं, और कोई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि उनको बीमारी कुछ है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द रहता है, कहीं पेट में दर्द है, कहीं सिर में दर्द है, और सब जांच करवाते हैं, सब जगह पे करवाते हैं, कहीं कोई बीमारी नहीं निकलती है, ऐसे भी होते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अपने घर में या बिजनेस में कोई तनाव है या कोई नुकसान हो गया है, तो टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हमारे लौकिक जीवन को देखते हैं कि लौकिक और अलौकिक जीवन को देख के, तो वो राय लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कैसे सशक्त करेंगे, तो उनके मन को हम कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, तो उनको एक एक तरीका होता है समझाने का। तो पहला तरीका तो जो लौकिक में हम करते हैं कि भाई हम बताते हैं, देखो किडनी के पेशेंट ये है, 10 साल का बच्चा है, 80 साल का बूढ़ा है, एक पूरा किडनी फेल है इनके, फिर भी कंप्लीटली ठीक है, मतलब शारीरिक रूप से ठीक नहीं है लेकिन मानसिक रूप से ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आजकल सब लोग बीमारियों के लिए दरवाजा खोल दिए हैं, कुछ भी पढ़ के आते हैं, गूगल में पढ़ के आते हैं, और इतना टेंशन ले देते हैं कि उनको सब वो सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं कि मेरे पैरों में सूजन भी आ गई है, मेरे को बार बार यूरिन भी पास करनी पड़ रही है। तो मेरे लाइफ में अभी रिसेंटली ऐसे 2-3 पेशेंट आए, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये शारीरिक तकलीफ आपको नहीं है, आपको उससे कम से कम 10 बार हर जगह पर टेस्ट करवा के आया। तो फिर मैं बोला आपके मन को आपको सशक्त करना है। तो मन को आप कैसे सशक्त करेंगे, तो मन के अंदर आपको ज्ञान चाहिए, एक विजडम चाहिए, तो उसके अच्छी सोच चाहिए, मतलब मन को परिवर्तन करना है तो मन में कुछ सकारात्मक चीजें जानी होगी। तो मन को सकारात्मक चीजें कहां से मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी, और हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान हम इन ये जो मतलब मानसिक रूप से कमजोर है तो हमारे पास आते तो उनको दे सकते हैं। तो शारीरिक और मन को मतलब स्ट्रांग तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ राजयोगा मेडिटेशन भी सीखना है। तो मेरे ऐसे 2 पेशेंट को मैंने राजयोगा मेडिटेशन सेंटर में भेजा और उनका मुझे रिप्लाई आया उसके बाद कि हमको अच्छा लग रहा है। तो दोनों पेशेंट्स का मेरे को रिप्लाई आया। तो उनके मन को सशक्त करना है, तो हमारी स्थिति अगर सही रहेगी तो उनको हम शांत करेंगे, पहले शांत करके उनके जो मन में जो फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को निकालनी है, उस बीमारी को मन से निकालनी है। शरीर में तो बीमारी नहीं है, शरीर में बीमारी रहेगी भी। मैं तो ये भी कहता हूं कि आपको किडनी फेल हो गई, आप डायलिसिस पे हो, लेकिन आप उससे शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बारे में बीमारी के बारे में सोच सोच के बीमारी आने से पहले आप बीमारी को इन्वाइट करें, और बीमारी आ जाएगी, आप वो बीमारी से नहीं मरेंगे लेकिन वो सोच से आप मर जाएंगे। तो उससे हमको उनको अलग करना है। तो मैं तो ये भी कहता हूं, अगर आपको कैंसर भी है तो कैंसर से भी डरना नहीं है, कोई भी बीमारी हो बीमारी से डरना नहीं, वो तो शरीर की बीमारी है, लेकिन हम उसका अपने चित्त पे ले लेते हैं और मन पे ले लेते हैं। तो मन कमजोर होगा तो उसका असर शरीर पे जरूर पड़ेगा, आपका एक ऑर्गन फेल हुआ है तो दूसरा ऑर्गन भी फेल होगा और अब जरूर आपको शरीर आपका छूटेगा। तो मन को सशक्त कराने के लिए ऐसे पेशेंट को हम राजयोगा मेडिटेशन के लिए सेंटर्स पे भेज रहे हैं और रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है। तो ये बात मैं शेयर करना चाहता हूं। तो कभी भी मैं एक यहां पे भी जो लोग बैठे हैं, तो कभी भी अपने रिपोर्ट्स को खुद नहीं रीड करना है आपको। हां, आपको इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको जो तकलीफ है वो जरूर बोलिए, लापरवाह नहीं रहना है, लेकिन अब जब हम खुद अपने रिपोर्ट्स रीड करेंगे तो उसको उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता और हम लोग गलत धारणाएं अपने मन में धारण कर लेते हैं और अपने सजेशंस देने वाले भी बहुत लोग रहते हैं, फ्री सजेशंस काफी मिलती रहती है अपने को, तो हम इधर से उधर उधर से इधर भटकते रहते हैं, तो ये चीज अपने को नहीं करनी है। तो इसका बाबा का ज्ञान हम जब इसमें यूज करते हैं तो उसको भी हम बता सकते हैं न्यारा और प्यारा कैसे रहना है और अपने शरीर से डिटैच कैसे होना है स्वयं को। ओम शांति, थैंक यू।
कभी कभी अलौकिक जीवन में भी हम बच्चों से उम्मीद लगा के बैठते कि ये भी ज्ञान में चलना चाहिए, और हम बहुत हम तभी भूल जाते कि ये ट्रस्टी और निमित्त भाव भी हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें जो रास्ता हमने बाबा से सीखा है वो रास्ता हमें बच्चों को बताना जरूर है, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना है, वहां उस सीढ़ी तक लेके जाना है, पर सीढ़ी तो चलना उनको खुद को ही है, वो खुद ही चलेंगे तो वो गिरेंगे नहीं, नहीं तो दो नाव में पैर हो जाएंगे उनके। तो इसीलिए बस हमें निमित्त भाव से उनकी, यानी हर एक रिश्ते से हमें निमित्त भाव से ही निभाना है। और बाबा ने भी मुरली में कहा है कि मेरा हर एक बच्चा मधुबन निवासी है, तो हमें अपने आप को मधुबन निवासी ही है, हम सिर्फ हम सेवा अर्थ निमित्त भाव से हमारे जगह पे है, तो यही है ट्रस्टीपन। ओम शांति।
ओम शांति। जैसे भाई जी कह रहे थे सेवा में सफलता, तो सेवा में सफलता सबसे पहले तो हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि हमने ये सेवा करनी है तो सफलता मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। जब तक हमारा संकल्प ही नहीं होगा ऐसे ही, चलो मैं भी सेवा कर रहा हूँ एक ढीले मन से कि हाँ वो जा रही है मैं भी चली जाऊं, ये नहीं। अपने मन में होना चाहिए कि मुझे ये सेवा करनी है, यज्ञ अर्थ कुछ करना है, तो हमारी सेवा सफल होगी। और मैंने जैसे टेलरिंग में मैं सेवा कर रही हूँ अभी, तो अभी मुझे आना था तो मेरे मन में ये भी संकल्प था कि इस बार मैं अपने युगल से कुछ भी सहयोग नहीं लूंगी। और दो महीने से मेरे शॉप पे काम रुका हुआ था कि हमारी ना गलियां सब तोड़ दी थी, दोबारा बननी थी, तो उस वजह से कोई कस्टमर आ नहीं रहा था। दो महीने का किराया मेरे सिर चढ़ा हुआ था कि दो महीने का किराया भी देना है दुकान का और पैसे भी जमा करने हैं मधुबन जाने के लिए। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैंने सेवा पे जाना है और वहां के लिए भी कुछ लेके जाना है, अभी भंडारी के लिए भी लेके जाना है और युगल से कुछ नहीं लेना। अब तू जाने, तेरा काम जाने, किराया भी मैंने चुकतू करके जाना है, अभी पीछे से उनके कोई संकल्प ना चले। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कुछ काम आने लगा, मैंने पिछला बकाया किराया सारा दे दिया, 2 दिसंबर तक मैंने सब किराया दिसंबर का भी दे दिया मैंने एडवांस। फिर मैंने कहा कि अब जो भी आएगा वो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, जितनी भी होगी वो सारा का सारा मैं मधुबन में सफल करूंगी। तो काफी दिन तक कुछ नहीं आया, लास्ट के 5 दिनों में मुझे क्रिसमस का ऑर्डर मिल गया। मैं ड्रेसेस करती हूँ, फैंसी ड्रेसेस का काम करती हूँ, तो क्रिसमस का ऑर्डर आ गया चर्च से, काफी सारी ड्रेसेस इकट्ठी आ गई, तो ऐसे करके कुछ पैसे आ गए, कुछ शादियों का सीजन था वो आ गए। तो सिर्फ 5 दिनों में मैंने जनवरी मास का भी किराया एडवांस दे के आई हूँ और साथ में जितना मुझे चाहिए था उतना मैं लेके आई हूँ। तो ऐसे अगर हमारा संकल्प है तो वो बाबा जरूर पूरा करता है ये सब। क्रिसमस की जरूरत ही नहीं है, जितना मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ये तो है नहीं कि मुझे कोई घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने सिर्फ शौक के लिए बुटीक खोला हुआ है कि मुझे ये है कि घर बैठे बैठे मैं ऐसे हो गई थी, मैंने बीच में काम छोड़ दिया था टेलरिंग का बिल्कुल ही, तो घर बैठे बैठे एकदम जैसे बॉडी जाम हो जाती है ना ऐसे हो गया। तो मैंने फिर ये दोबारा बुटीक शुरू किया कि मैं बिजी रहूं, और वैसे भी जब तक हम खाली रहते हैं तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो कहीं ना कहीं व्यर्थ जरूर चला जाता है। हम चाहे कि हम सारा दिन बाबा की याद में या बाबा के साथ जुड़े रहे, नहीं हो सकता। गृहस्थी में तो बिल्कुल मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने कहा जितना मैं बिजी रहूंगी उतना इजी रहूंगी, और काम के टाइम बल्कि कर्म के टाइम हम बाबा को याद कर पाते हैं। जब भी कोई काम रुकता है ना तो बाबा को बुलाते हैं, बाबा आजा मेरा ये काम सफल कर दे। तो बाबा के साथ हैं तो सफलता मिलती है। दूसरा हमारा जब संकल्प होता है दृढ़ तो सफलता ऐटोमेटिकली मिल जाती है। ओम शांति।
अभी सिस्टर ने बताया डिटर्मिनेशन का। मैं इस हॉस्पिटल में जहां पर मैं अभी करेंटली काम कर रही हूं 10 सालों से कर रही हूं, कभी टायर पंचर नहीं हुआ। और एक दिन सिस्टर ने बोला कि मतलब बार बार रिक्वेस्ट आ रही कि हेल्प चाहिए, कुछ सेवा करनी थी सेंटर में। मैंने 2 घंटे की छुट्टी ली कि अभी जाके मैं वहां सेवा करूंगी। जब नीचे कार पार्क में पहुंची, टायर पंचर, फर्स्ट टाइम इन लाइफ टायर पंचर। तो मैं सोचू मैं क्या करूं, हस्बैंड ने 6 बजे डायलिसिस शुरू करना है, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, अब मैं कैसे क्या करूं। फिर मैंने हस्बैंड को फोन किया और उनको मैंने अभी बताया नहीं था कि मैंने सेंटर में जाना है, मैंने छुट्टी ली है, मैंने वहां पे जाके सेवा करनी है। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, टायर पंचर हो गया। कहते तुम्हारी छुट्टी जल्दी होगी। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे सेंटर में जा रही हूं, वहां पे हेल्प करनी है, थोड़ी सेवा करनी है। कहते मैं आ रहा हूं। वो कार लेके आप वहां पे खुद खड़े हो गए कि मैं किसी को बुला के टायर चेंज कराता हूं, लेकिन तुम जाके सेंटर में सेवा करो। तो होता ये है, मैंने क्लिनिक प्रैक्टिकली ये देखा कि बाबा हर स्टेप पे आपको टेस्ट करते हैं कि आपका डिटर्मिनेशन कितना है। उस डिटर्मिनेशन से डामाडोल नहीं होना है, स्टे स्ट्रांग, और जो डिटर्मिनेशन है उसको पूरा करो। सेवा की जो भावना है वो अंदर से होनी चाहिए, बाहर से किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है। बाबा अंदर से टेस्ट कर रहा है आपको, आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि मन से जो आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। टिपिकल एग्जांपल मैं अपने हस्बैंड का देती हूं, लौकिक हस्बैंड का। वो इंसान इतना स्ट्रांग है, 2 साल से डायलिसिस कर रहा है, लेकिन मैंने कभी आज तक उनसे मुंह से अफवाह करके मतलब कोई वाह करके नहीं सुना हुआ कि हां कि मेरे को कुछ दुख है। डॉक्टर कह रहे थे कि आप जिम नहीं जा सकते हो, फिजिकली आप अपनी बॉडी से कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उस इंसान ने प्रूव करके दिखाया कि नहीं मैं जा सकता हूं, मैंने अपनी बॉडी की मसल्स बना के रखनी अपने आप। मैं ये नहीं वहां पे जाके बॉडी लिफ्टिंग कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को चलाना है। तो डिटर्मिनेशन, फिजिकली मेंटली बैलेंस जो शरीर का बहुत जरूरी है। बाबा आपको देख रहा है और आप बाबा को भी देखो, बाबा को याद रखो। ओम शांति।
ओम शांति। मैं 5 साल से बाबा के ज्ञान में चल रही हूं। शरीर का नाम मोनिका, राजस्थान अजमेर से, ब्यावर। मेरे को क्या, वैसे तो बाबा ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराया हर चीज का, लेकिन मुझे क्या धरण बहुत होती थी, आप जानते होंगे धरण, यानी हाँ नस हो जाती है ना, तो उसके लिए फिर क्या अपना डॉक्टर भी कोई दवाई का मतलब डॉक्टरी दवाई कोई काम नहीं करती उसमें, हमें किसी से या तो ठीक करवानी पड़ती है या उसको खुद ऐसे मतलब होता है थोड़ा करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है इलाज के लिए। तो एक दो बार मैंने फोन पे, हमारे होता है कि फोन पे अपन किसी से करवाते हैं तो ठीक हो जाती है, मैंने कई बार करवाई। हर आए दिन जैसे थोड़ा सा भी बोझ उठाते तो धारण हो जाती थी, एक बाल्टी भी पानी नहीं उठा सकते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो फोन उस आत्मा का स्विच ऑफ आ रहा था, अब मैं परेशान हो गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरे क्या लूज मोशन हो जाते हैं, पेट दर्द का आत्मा के फोन का। तो अब मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा आप ये बीमारी अब तो तेरे को ही ठीक करनी पड़ेगी, मैं रोज रोज किसको आए दिन ऐसे मतलब कॉल करके अपना मतलब इलाज करूं। तो मैंने ऐसे ही बैठ के मैंने कहा ट्राई करती हूं, तो 1-2 मिनट ऐसे ही बाबा को विजुअलाइज करके और उनकी किरणें अपने ऊपर लेते हुए ठीक करने का मतलब ऐसे किया विजुअलाइजेशन से, और मुझे फील हुआ मेरा पेट दर्द एकदम ठीक हो गया, बहुत अंदर से एकदम हल्कापन और एकदम रिलैक्स लगा। तो मैंने कहा अभी देखते हैं, और थोड़ी देर बाद में मुझे मतलब जैसे थोड़ा सा खाने से भी लूज मोशन हो रहे थे और जो पेट दर्द और अंदर से सारा कमजोरी हो रही थी एकदम ठीक हो गई। उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, अपने को बीमारी के लिए किसी डॉक्टर या किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, बाबा है तो हमारी हर चीज के लिए वो तैयार है जब हम उसे बुलाते हैं। और आज दिन तक भी जब भी मुझे ये परेशानी होती है तो मैं बस एक बार उसे बुला के ऐसा करती हूँ, और मुझे एक बार में नहीं तो 2 बार में ठीक हो जाता है मेरा। तो ये तो मेरा अपने इस शरीर के लिए था, और बाकी परिवार में भी सब तरह से बाबा ने अब सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ज्ञान और योग तो है ही है, सबसे बड़ा दृढ़ निश्चय विश्वास, तो वो मुझे बाबा पे शुरू से ही था। 6 महीने बाद से बहुत एग्जाम या कहें कि परिस्थितियां आई, लेकिन हर चीज में बाबा ने मुझे सब चीज से निकाला और अभी तक पूरी तरह से समझते हैं कि बंधन मुक्त पूरी तरह से लगभग कर दिया। थैंक यू, ओम शांति। सबसे बड़ा बंधन तो यही था कि यहां नहीं जाना है, ये ऐसा कर देते हैं वो कर देते हैं, जो कि फैला हुआ है ना कि बाबा इस ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद में वही पवित्रता और ये सब चीजों का और जादू होता है, ये सब है। तो मेरे जो युगल है वो तो कॉलेज टाइम से जानते थे, आधा अधूरा ज्ञान, खतरा है जान वाली स्थिति थी। हर समय मुझे बोलते रहते थे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से था नहीं, मुझे जो फील हुआ एक अंदर में बहुत अशांति रहती थी, ऐसे लगता था मुझे कुछ चाहिए, लेकिन जब बाबा का ज्ञान सुना तो एक सप्ताह में ही मुझे अंदर से बिल्कुल हल्कापन हो गया और एक अंदर से खुशी बढ़ती गई। तो मुझे लगा नहीं यही सब कुछ है, इससे पहले मैंने 3 गुरु किए इन सब चीजों के लिए, पता नहीं क्या क्या माला वाला जब वगैरह, उनसे कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा नहीं ये कह रहे हैं जो सही नहीं है। और खुद ही सिस्टर शिवानी का जो प्रोग्राम देखते थे आस्था चैनल पे, कहते थे इसको सुनो देखो ये कितना अच्छा समझाती है। मैं एक दो बार सुना लेकिन ज्ञान नहीं था तो अच्छा तो लगता था, लेकिन अंदर नहीं जाता था वो क्या कह रही है ज्ञान। फिर जब थोड़े टाइम में ही ज्ञान मिला मुझे, एकदम अचानक ही मिला, वो भी बहुत एकदम समझ में ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं वही ज्ञान, जैसे कि तीसरे गुरु कोई बनाए थे मैंने पंजाब के, कोई हैं वो आशुतोष जी महाराज ऐसे कुछ है, तो उनका बुक लेकर के मैं गई थी पड़ोस में कि मुझे ना ये बुक आपसे मतलब आपके लिए लगवानी, जैसे ज्ञान अमृत हम बांटते हैं सबको। तो उन्होंने कहा कि पहले तो सुना 2 मिनट, फिर कहते नहीं नहीं हम ये सब नहीं करते। बाबा का बताया, फोटो दिखाई और बुक भी दी उन्होंने 7 डेज कोर्स की कि आप एक बार पढ़ो, अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो बुक 1.5 दिन में पूरी पढ़ डाली। जो 7 डेज में करवाते हैं वो मैंने 1 दिन 1.5 दिन में पूरी पढ़ के, मैंने कहा मुझे ये अच्छा लगा, पहली बार ऐसा सुना कि कोई इंसान गुरु नहीं होता किसी ज्ञान में, ऐसा भी कोई होता है क्या ज्ञान। तो मुझे वो बात बहुत पढ़ के भी अच्छी लगी, और फिर मैंने उनसे कहा मुझे ये समझाइए, और उन्होंने मुझे 8-10 दिन में, नवंबर एंड का टाइम था और अभी जस्ट 5 साल मुझे हुए ही हैं, 2014 में उन्होंने मुझे, उस आत्मा ने मुझे ज्ञान बाबा का जो समझाया, तो उस दिन से मुझे इन सब चीजों से बाबा ने अपने आप ही डिटैच भी करते गए। और जो एक किसी का साथ चाहिए या युगल का रहता था कि मुझे टाइम नहीं देते ऐसा कुछ, तो वो सबसे मुझे बाबा ने फ्री कर दिया। अभी तक भी 3-4 महीने तक भी पहले तक भी कुछ ना कुछ ऐसे आती रहती थी, हर थोड़े टाइम में परिस्थितियां बहुत आई, लेकिन निश्चय था कि नहीं बाबा है और वो इन सब चीजों से मुझे निकालेगा। इवन अभी आने तक भी हर टाइम मुझे ना मैं ऐसे ही आती थी कि नहीं मुझे जाना है, और वो कहते थे जाओ ना तो अब आना मत वापस, वहीं पे रहना। मैं कहती ठीक है। और इस बार उन्होंने खुद ने बोला आगे से कि अच्छा ठीक है जाओ। नहीं बच्चे हैं तीनों,
फिर भी आपको बोला कि आना मत। तो जब ज्ञान में रहेगी तो क्या होगा।
और बहुत बड़ा बाबा ने घर भी बनवाया 2 मंजिल का, वो भी वहां से इसलिए छोड़ के पुराने घर पे रहते हैं हम लोग कि वहां पे मैंने पूरी कॉलोनी में बाबा का ज्ञान का खूब परिचय वगैरह दिया, तो उनको लगा ये तो यहाँ पे पता नहीं क्या करेगी, पुराने घर पे चलो। मैंने कहा ठीक है बाबा जहां बिठाए, वहां से फिर मेरे को डेली सेंटर आना जाना भी इजी हो गया। मैंने कहा ये ज्यादा अच्छा है, मैंने कह भी दिया, मैंने कहा वहां से मैं देखना डेली जाऊंगी, तुम भले मुझे पुराने घर लेके जाओ। और आज काफी टाइम हो गया, डेली मुरली डेली क्लास बाबा करवाते हैं बाबा, मतलब मैंने कहा इसमें भी जरूर कुछ अच्छा है भला है, वो घर किराए पे चल रहा है। हाँ लोन भी तो इतना ले लिया ना, लोन लेके घर बनाया, मना किया, मानते नहीं। जैसी जैसी बाबा की इच्छा। ऐसे काफी एक्सपीरियंस हैं जो बाबा ने मुझे बहुत अच्छे से करवाया. थैंक यू. ओम शांति.
चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही. चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही. चल अकेला. Yeah.